अश्रुपूरित नेत्र न नहीं किंचन कुछ भी उवाच कहा सह उसने वास्तविक्लवः वाणी रुद्ध होने से गदगद कंठ से हृदय अपने हृदय से उपगुह्या आलिंगन करके अमुम भगवान को अधात रह आया अवस्थित खड़ा। अनुवाद उत्तर श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद महाराज की नेत्रों में आंसू भर आने तथा वाणी रुद्ध हो जाने से आदि राजा महाराजा पृथ्वी न तो ठीक से भगवान का दर्शन कर सके और न भगवान को संबोधित करने के लिए बोल सके। उन्होंने केवल अपने हृदय के भीतर भगवान का आलिंगन किया और हाथ जोड़े हुए उसी तरह खड़े रहे। मेरे पीछे दोहराइए, नेत्रों में अश्रु भर आने तथा वाणी रुद्ध हो जाने से आदि राजा महाराज पृथु न तो ठीक से भगवान का दर्शन कर सके और न भगवान को संबोधित करने के लिए बोल सके। उन्होंने केवल अपने हृदय के भीतर भगवान का आलिंगन किया और हाथ जोड़े हुए उसी तरह खड़े रहे। क्या दृश्य है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा बड़े ध्यान से सुनेगा। जिस प्रकार ब्रह्म संहिता में कृष्ण को आदि पुरुष कहा गया है उसी प्रकार इस श्लोक में राजा पृथु को भगवान का सत्तावेश अवतार होने के कारण आदि राजा कहा गया है। भक्त होने के साथ ही वे परम वीर थे जिसने अपने राज के समस्त दुष्टों को जीत लिया था। वे लड़ने में स्वर्ग के राजा इंद्र के समान पराक्रमी थे। उन्होंने प्रजा को सुरक्षा प्रदान की और उन्हें पूर्ण कारण द्वारा भगवान की भक्ति में लगाया। उन्होंने सभी प्रकार की विपत्तियों में प्रजा को शरण प्रदान किए, बिना एक छदाम भी कर के रूप में वसूल नहीं किया। जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति है ईश्वर भीन होना और इस प्रकार पापी बन जाना। यदि राज का प्रधान या राजा प्रजा को अवैध मंथन, मांसाहार, मादक द्रव्य सेवन तथा द्वित क्रीड़ा की छूट देता है तो राजा उसके लिए उत्तरदायी होता है और उसे प्रजा के पापों का फल भोगना पड़ता है, क्योंकि वह प्रजा से वृथा कर वसूल करता है। शासक के लिए इतने सारे नियम हैं और चूंकि राजा पृथु ने इन सभी नियमों का पालन किया इसलिए उन्हें आदि राजा कहा गया है। महाराजा पृथु जैसा उत्तरदायित्व राजा प्रथम कोटि का शुद्ध भक्त भी हो सकता है। राजा पृथु के आचरण में हम अश्वर देखते हैं कि किस प्रकार वे भीतर तथा बाहर से शुद्ध भक्ति में भाविभोर हो जाते हैं। आज ही हमने, चूंकि तादर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, बड़ा सुंदर प्रभुपाद जी यहां लिख रहे हैं कि आज ही हमने बंबई के समाचार पत्र में पढ़ा है कि सरकार मद्य निषेध नियम का वापस लेने जा रही है। इसका मतलब प्रभुपाद जी यहीं थे जब इसका तात्पर्य लिख रहे थे, तभी तो लिख रहे हैं। देखिए क्या प्रभुपाद जी वहां पर। गांधी जी के असहयोग आंदोलन के समय से ही बंबई में मद्यपान की छूट नहीं थी, किंतु दुर्भाग्यवश नागरिक इतने चतुर हैं कि उन्होंने अवैध शराब बनाना बढ़ा दिया है और शराब दुकानों में खुले रूप में न बिककर शौचालयों तथा अन्य कुत्सित स्थानों में बिकती है। इस प्रकार की तस्करी को न रोक पाने के कारण सरकार ने सस्ते मूल्य पर शराब की पूर्ति करने का निश्चय किया है, जिससे लोग शौचालयों के पश्चात दुकानों से शराब खरीदें। सरकार नागरिकों के पापपूर्ण जीवन को बदल पाने में असफल रही है, अतः राजकोष को भरने के लिए और कर की क्षति न हो इस उद्देश्य से जनता के लिए कम मूल्य पर शराब बनाने का निश्चय किया है। इस प्रकार की सरकार पापमय जीवन के फलों को अर्थात युद्ध, अकाल, भूकंप तथा अन्य विपदाओं को रोक नहीं सकती। प्रकृति का नियम है कि जब ईश्वर के विषय में के नियम में त्रुटियां नहीं होने लगती हैं, जिसे भगवद गीता में धर्मस्य ग्लानि कहा गया है, तो उस समय युद्ध के अचानक होने के रूप में कठोर दंड मिलता है। हमने भारत तथा पाकिस्तान के बीच युद्ध को अपनी आंखों देखा है। प्रभुपाद जी बोल रहे, एक पास के भीतर ही जनता धन की अपार क्षति हुई और संपूर्ण संसार में उपद्रव हुए, पापमय जीवन के यही परिणाम है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उद्देश्य लोगों को शुद्ध और पूर्ण बनाना है। यदि हम कृष्ण चेतना के फलस्वरूप आंशिक रूप में भी शुद्ध हो सके, जैसा कि भागवत में कहा गया है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, तो काम वासना लालच भव रोग कम हो जाएंगे। यह श्रीमद् भागवत के संदेश तथा कृष्ण चेतना को प्रसारित करने से ही संभव है। बड़े बड़े औद्योगिक और व्यापारिक प्रतिष्ठानों ने सुरक्षा कोष में हजारों रुपए दिए हैं, जो बारूद के रूप में धर्म को भस्म कर रहा है, किंतु इसे दुर्भाग्य कहा जाएगा कि यदि उनसे कृष्ण महानामृत आंदोलन की प्रगति के लिए धन मांगा जाता है तो आनाकानी करते हैं। ये हम लोग सब अच्छी तरह से देखते हैं, प्रभुपाद जी तो आनाकानी करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में संसार में समय समय पर उथल पुथल तथा युद्ध आरंभ होते रहेंगे, जो कृष्ण महानामृत न होने का परिणाम है। आज इस कलयुग में जो भी विपत्तियां आपत्तियां हो रहे हैं, ये कृष्ण महानामृत न होने का ही परिणाम है। कितना सुंदर प्रभुपाद ने तात्पर्य में समझाया है, इसी को हम आज साथ करेंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन श्लाघया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए समय बहुत कम है और प्रसंग बहुत विशाल है, और आप लोग सुनते चले आ रहे हैं, क्योंकि पृथु महाराज जिनकी चर्चा यहाँ पे हो रही है, इनकी कथा आरंभ हुई प्रथम भाग से ही, ये तो द्वितीय भाग चल रहा है। और इस समय जब तो हम इसी चीज को कंसंट्रेट करें जो आज का श्लोक है, कि इस समय दृश्य क्या है, इसको आप लोग ध्यान से सुनेगा कि ये कथा दृश्य इस प्रकार से है। जब 99वां यज्ञ को नष्ट करने के लिए इंद्र, देवताओं के राजा इंद्र, उन्होंने अश्व चुरा लिया, और जानते क्या बन करके, साधु बन करके, सन्यासी का भेषधारण। हम तो जानते थे कि रावण ही साधु का वेश धारण किया था, लेकिन इंद्र ने भी साधु का वेश धारण किया, सन्यासी का वेश धारण किया, और सन्यासी का वेश धारण करके और सुराग करके ले जा रहे थे। ये तो अच्छा हुआ अत्रि मुनि ने देख लिया है ना, और उन्होंने पृथ्वी महाराज के बेटे से बोला कि देखो क्या हो रहा है, आपका घोड़ा जिसके लिए यज्ञ हो रहा है अश्वयज्ञ, उसको जो है इंद्र लेके जा रहा है। तो उनके बेटे ने जो है किसी तरह से करके घोड़ा वापस लाया है ना, लेकिन इंद्र से नहीं रहा गया, दोबारा भी उन्होंने ऐसा काम किया, फिर वही सन्यासी का, और अलग अलग समय में अलग अलग सन्यासी का, कभी कमंडल लेता था, कभी खोपड़ी लेके चलता था, कैसे विचित्र। जब आप कुंभ जाए ना कभी कुंभ मेला में, तो बड़े बड़े विचित्र साधु दिखते हैं अलग अलग भेदभाव के। तो इंद्र भी प्रभुपाद तात्म बड़ा बहुत विस्तार में यहाँ पे समझाया है कैसे साधुओं से हमें क्या रहना चाहिए, सावधान होना चाहिए। तो इस तरह से ये प्रसंग चल रहा है कि किस तरह से इंद्र जो है उत्तमाचार्य और अत्रि मुनि के हस्तक्षेप से घोड़ा बसता गया और फिर इससे गुस्से होकर के वे ब्राह्मण ऋषि मुनि जो वहां पे यज्ञ करा रहे थे उनको बड़ा गुस्सा कि इंद्र की इतने बड़ी हिम्मत है ना, हमेशा बार बार जब भी होता है ये करता है, इसलिए आज उसका हम इस यज्ञ में उसी को आवाहन करके मार डालेंगे। ऐसा मंत्र उच्चारण किया उन्होंने, जैसे ही आहुति देने वाले थे है ना ब्रह्मा जी आगे, ब्रह्मा जी प्रकट, उन्होंने समझाया हाथ जोड़कर या ऐसा मत करो बड़ा उत्पात हो जाएगा है ना, क्योंकि इंद्र को मारने का किसी का अधिकार नहीं है, भगवान का किसी को मारने का अधिकार है इस अपने नियम। बहुत समझाने के बाद मैं संक्षेप बहुत समझाने के बाद जो है फिर इंद्र की जान बची, वो किया कहे कि सब प्रसन्न है हम लोग, कोई दिक्कत नहीं, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, कहे कि आप फिर पृथ्वी महाराज से प्रार्थना किया कि आप जो है यहीं पे रोक दीजिए सब, यहीं से सब आपके उससे प्रसन्न है क्यों, क्योंकि पृथ्वी का जो जन्म हुआ पृथ्वी राजा का आप जानते हैं दोनों भुजाओं का चरणिंग करके उनकी उत्पत्ति है, एक भुजा से पृथ्वी महाराज और दूसरी भुजा से उनकी पत्नी अर्ची की उत्पन्न हुआ, और जितने भी देवता हैं ये ब्रह्मा जी खुद है ना कुबेर जी जितने भी देवता हैं वरिष्ठ देवता कि 33 करोड़ देवताओं में भी कुछ वरिष्ठ देवता होते हैं, तो उन वरिष्ठ देवता आ करके उपहार दिए थे पृथ्वीनाथ, इतने बड़े राजा इतने बड़े महान भक्त कि देवता आ करके उपहार दें, ऐसे पृथ्वी महाराज की प्रसंग चल रहा है जिसे कुबेर जी आके सिंहासन दिए थे, श्रवण का सिंहासन राजा को बैठने के लिए कुबेर जी ने सिंहासन दिया था, इतना सुंदर था, बणुर जी ने छाता प्रदान किया था, ऐसा छाता जो प्रकाश से प्रकाशित रहता था, प्रकाशित छाता और उससे जल की फुहारे निकला करती थी उसमें छाता, ऐसा सुंदर सुंदर वस्तु इन लोगों ने दिया, वायु ने चामर दिया था, धर्म ने पुष्पहार दिया था, और वही इंद्र उस समय जब पृथ्वीराज प्रकट जब चरणी से मंथन से प्रकट हुए थे उत्पन्न हुए थे तो उन्होंने मुकुट पहनाया था, शंकर जी ने शिव जी ने तलवार दिया था, दुर्गा जी ने ढाल दिया था और ऐसा ढाल दिया था जिसने 100 चंद्रमा के चिन्ह अंकित थे, इस तरह से सारे देवताओं ने पूरा लिस्ट है इसकी हाँ। किन किन देवताओं ने क्या क्या उपहार दिया था, तो ऐसे पृथ्वी राजा की यहाँ पे चर्चा हो रही, तो इस पृथ्वी के जब भगवान विष्णु जब प्रकट हुए इंद्र को साथ, यहाँ पे जब मैत्री मणि कथा सुना रहे हैं तो इंद्र भी साथ में आया हुआ था, क्योंकि इंद्र की जान ब्रह्मा जी ने बचाया, तो भगवान विष्णु जब इस पृथ्वी पर जब उनके सामने प्रकट हुए आए तो इंद्र भी साथ में आए, तो वही मैत्री मुनि जी कह रहे हैं, मैत्री मुनि बता रहे हैं विदुर जी से, ये प्रसंग इस तरह से कि विदुर जी से मैत्री मुनि सुना रहे हैं पृथ्वी महाराज के चरित्र के बारे में कि किस तरह से भगवान प्रकट हुए, इतना सुंदर उपदेश दिया पृथ्वी महाराज को कि राजा का धर्म क्या होता है, कैसे आपको इस सृष्टि का ये सब चलाना है, सब उन्होंने समझाने के बाद भगवान जैसे ही चलने वाले थे भगवान आए दर्शन के, जिसमें दर्शन के भगवान भागवत में इतना सुंदर वर्णन किया गया है कि भगवान पृथ्वी महाराज के चरित्र से, उनका चरित्र इतना उज्जवल और इतने शुद्ध भक्त थे अंदर से भी और बाहर से कि भगवान बड़े प्रभावित हो गए, वैसे जो देवता होते हैं भगवान होते हैं आप जानते हैं उनका चरण कमल जो है पृथ्वी पर स्पर्श नहीं होता, देवता लोग आसमान में अगर नीचे आते भी हैं तो हवा में ही खड़े रहते हैं, ये उनकी पहचान है, लेकिन पृथ्वी महाराज के चरित्र से भगवान इतने प्रभावित हुए कि जब गरुड़ पर से उतरे भगवान उनसे मिलने के लिए तो एक हाथ गरुड़ जी कंधे पर रखा और दूसरे हाथ से उल्टा हाथ रखे है और चरण जो है पृथ्वी से स्पर्श भी कर रहा है और नहीं भी करवा रहे, इस तरह से एकदम छूते छूते रह जाए, इस तरह से इतना भगवान अंदर आ गए। तो ये प्रभुपाद जी वहां तात्पर्य में इस चीज को समझाए कि देखो भगवान अपने भक्तों के चरित्र से, व्यवहार से, स्वभाव से कितना बिहर जाते, कितने आप भगवान कितने प्रसन्न हो जाते हैं कि ये सब भूल जाते हैं भगवान, कितनी बड़ी बात है। ऐसे पृथु महाराज के बारे में ये चर्चा यहाँ हो रही। तो भगवान जैसे ही चलने वाले थे और तभी भगवान नहीं जाए, रुक गए भगवान उनके बड़े से, तब कहा कि और इस श्लोक में जो बताया जा रहा है किस तरह से भगवान का दर्शन करके उनका हृदय इतना गदगद हो गया, पता नहीं कि वो भगवान को उनका जो कंठ है, ऐसा कभी कभी होता है कि जब आप बहुत प्रसन्न हो जाते हैं है ना, और उस समय आवाज नहीं निकलती, ये स्थिति जिसे आप अनुभव कर सकते हैं। कभी कभी ये चीजें एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, बल्कि आप इस चीज का अनुभव कर सकते हैं कि भगवान सामने आए और भगवान का दर्शन करके इतने गदगद हो गए पृथ्वी महाराज कि आवाज नहीं निकले। वो कुछ बोलना चाहते हैं, उद्बोधित करना चाहते हैं, लेकिन उनका कंठ अवरुद्ध हो गया। ये स्थिति है, ये दृश्य है उसमें गढ़। ठीक है, उन्होंने कल अपने हृदय से, क्योंकि वो बोल नहीं सकते, गला उनका अवरुद्ध हो गया है, तो अपने हृदय में ही सही भगवान को क्या करते हैं, आलिंगन करते हैं। ठीक है, ये है भक्ति का प्रभाव। भक्त किस तरह से भगवान के प्रति समर्पित होता है, जब शुद्ध भाव में होता है तो उसके क्या लक्षण होते हैं, ये पृथ्वी महाराज के इच्छेद से पता चलता है। उनका हृदय एकदम गदगद होता है और हाथ जोड़े सिर्फ खड़े रह गए क्योंकि आवाज नहीं निकल रही है। ए भगवान, लेकिन अपने तात्पर्य में प्रभुपाद जी का समझाने का तरीका देखिए, प्रसंग इस तरह से है लेकिन प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं ये महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ब्रह्म संहिता में कृष्ण को आदि पुरुष कहा गया है, तो कोई कंफ्यूज ना हो, अरे इनको तो आदि राजा कह दिया गया। तो प्रभु समझाते हैं कि राजा पृथ्वी को भी आदि राजा कहा गया, आदि राजा, क्योंकि राजा पृथ्वी ये भगवान के ही अवतार हैं, सकता है विश्वा अवतार, तो इसलिए उनको आदि राजा कहा गया। क्योंकि जब भगवान प्रकट हुए थे, विष्णु भगवान जब पृथु जन्म के समय ही विष्णु भगवान ने उपहार, जब सारे देवता उपहार देने के लिए आए थे, तो यही स्वयं भगवान विष्णु भी आए थे उपहार देने के लिए। और उन्होंने क्या उपहार दिया, सुदर्शन चक्र। देखिए हमारे कृष्ण, हम कहते ना भगवान श्री कृष्ण सबसे बड़े बुद्धिमान हैं, जैसे राधा रास बिहारी, भगवान श्री कृष्ण हमेशा क्या रखते हैं अपने पास में, बांसुरी रखते हैं, और अपना ही पुरुषावतार विष्णु जी को चतुर्भुज रूप चार भुजा दे दिया हुआ है, अपना विस्तार कर दिया हुआ है, शंख चक्र गदा पद्म उनके हाथ में पकड़ा दिया है, और खुद क्या कर रहे हैं, बांसुरी बजा रहे। एक ऐसी इस सिद्धांत को वैष्णव भी समझ सकता है कि भगवान को समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से जो शास्त्रों का अध्ययन करता है अपनी वैष्णव परंपरा से इस चीज का अंतर, वही चीज का जानता है कि कृष्ण स्वयं भगवान है। एक कृष्ण की महानता है भगवान के लिए है कि अपना विस्तार उन्होंने विष्णु के रूप में किया हुआ है, चार भुजा उनको दे दिया हुआ है और अपना अस्त्र को प्राप्त, वही विष्णु अपने ही सख्त सेवा अवतार लेकर के पृथ्वी महाराज के रूप में है और अब क्या दे रहे हैं, सुदर्शन चक्र दे रहे हैं। तो हमें एक कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि जब विष्णु ने सुदर्शन चक्र पृथ्वी महाराज को दे दिया तो क्या उनका हाथ खाली हो गया, ऐसा नहीं है, ऐसा प्रश्न हो सकता है, ऐसा नहीं हुआ। तो इसीलिए उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य इस बात को समझा है कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जब विष्णु ने ही सुदर्शन चक्र दिया तो उनका हाथ खाली हो गया, नहीं, उनका सुदर्शन चक्र उनके पास है ना, जो सुदर्शन चक्र उन्होंने अपने सत्ता व्यवस्था अवतार पृथ्वी महाराज को दिया वो आंशिक शक्ति सुदर्शन चक्र वही था, है ना? सुदर्शन चक्र की कॉपी, दूसरी कॉपी। जब भगवान अपना विस्तार कर सकते हैं तो सुदर्शन चक्र का विस्तार नहीं कर सकते, आप खुद सोचिए। जब कृष्ण में से अनेक कृष्ण निकल सकते हैं तो सुदर्शन चक्र तो उन्हीं का है, उसमें भी कई सुदर्शन निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो सुदर्शन चक्र से सुदर्शन जो दिया, जो सुदर्शन चक्र दिया उसमें आंशिक शक्ति, सुदर्शन चक्र की जो पूर्ण शक्ति होती है उसका आंशिक शक्ति उसमें डाल करके एक सुदर्शन को पकड़ा दिया। एक दुष्टों का विनाश कराना है अपने सत्ता से उतार पृथु महाराज से, इस राजा का पालन कर प्रजा की सुरक्षा करने के लिए दिया। तो लक्ष्मी जी पीछे नहीं थी, लक्ष्मी जी भी आई थी साथ में, उन्होंने भी ऐश्वर्य अगाध विशाल ऐश्वर्य दिया। इस तरह तो वही विष्णु फिर भी यहां पे आए हुए यज्ञ स्थल के समय, और इस समय जो है उनके व्यवहार से, चैत्य से, भक्ति से भगवान इतने प्रभावित होंगे, जाना चाहते हैं और नहीं जा पा रहे हैं, इसे कहते भक्ति। भक्ति में कितनी शक्ति होती है कि भगवान जाने की इच्छा कर रहे हैं लेकिन भक्ति से इतने प्रभावित हैं, अपने भक्त के व्यवहार से, आचरण से इतना प्रभावित है कि भगवान जा नहीं पा रहे हैं। ये हमारे लिए कितनी बड़ी शिक्षा है। ये प्रसंग इस तरह से भगवान लीला इसीलिए करने आते हैं कि हम लीलाओं को समझें, उसका आनंद उठाएं और अपने जीवन में आचरण अपनाने का क्या करें, प्रयास करें। इसलिए भगवान ऐसा लीला कर रहे हैं। अब प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य सुना कि इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ओहो प्रजुना अरे इतने बड़े राजा। इस तरह से प्रभुपाद जी ने कहा कि राजा उसी को बनना चाहिए जो अपने प्रजा को सुरक्षा प्रदान कर सके, उसी को राजा बनने का अधिकार है। अब प्रभुपाद जी जब ये तात्पर्य लिख रहे थे तो प्रभुपाद जी के तात्पर्य से ही पता चलता है कि आज का जो प्रसंग कितना महत्वपूर्ण है कि आज का प्रसंग बंबई में, ये बंबई में लिखा गया तात्पर्य। हाँ, इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि आज ही मैंने समाचार पत्र में पढ़ा कि इस तरह से सरकार मद्य निषेध नियम का वापस लेने जा रही है। लेकिन याद रखिये प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताए कि कितनी गलत बात है कि राजा बनते हैं लेकिन प्रजा का ध्यान नहीं रखते हैं, कर टैक्स वसूल करते हैं, इसके लिए राजा नहीं बनना चाहिए। यही कारण है कि भगवान जब जब इस पृथ्वी पर ऐसे आशीर्व राजा आते हैं तो भगवान अपने प्रतिनिधित्व, अपने भक्तों को राजा बनाते हैं। क्योंकि जो भक्त है, अगर वो भगवान का भक्त है और राजा राजर्षि, तो वही प्रजा का ध्यान कर सकता है। अब प्रजा का मतलब शिव इंसान नहीं होते, प्रजा का मतलब क्या होता है कि पशु पक्षी भी राजा के लिए क्या है, प्रजा है। तो सबकी सुरक्षा करना ये राजा का कर्तव्य होता है सब, क्योंकि राजा की नजर में सब प्रजा है, चाहे वो पशु हो चाहे पक्षी है। तो ही प्रभुपाद जी कहते हैं कि आज के जो राजा हैं वो राजा उन मनुष्यों की क्या रक्षा करेंगे, पशुओं की क्या रक्षा करेंगे, पक्षियों की क्या रक्षा करेंगे। क्योंकि आज के राजा भक्त न होकर के अभक्त हैं, और जो चार नियमों को तोड़ने वाले हैं, जो वैदिक शास्त्र में बताया गया है कि हमें मांसाहार नहीं करना चाहिए, तो आजकल के जो राजा हैं वे स्वयं, जो व्यक्ति पशु पक्षी का मांस खा सकता है ना, और इंसान को कष्ट दे सकता है, वो राजा बनने के लायक नहीं है। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि आज ही मैंने समाचार पत्र पढ़ा कि बंबई में मद्य निषेध। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब सरकार ऐसा नियम बनाती है तो प्रजा जो है इतनी चतुर है कि सरकार के नियम को तोड़ने में बड़ी मास्टर होती है, वह बुद्धि लगाती है। जैसे ट्रैफिक का एक नियम है, हाँ, कि लाल बत्ती है सरकार नो एंट्री का बोर्ड लगा देती है। लेकिन लोग इतने चालाक हैं कि जब नो एंट्री का बोर्ड देखते हैं तो गाड़ी को रिवर्स करके चले जाते हैं। समझ गए ना मैं क्या सोचता हूं? तो वही प्रभुपाद जी कर रहे हैं कि जब सरकार ने यह नियम बना दिया कि कोई समाज में हर जगह शराब न बेचेगा, करेगा ते अवैध शराब बनाना शुरू कर दिया और छुप छुप के शराब क्या होंगे पीने लगे यही प्रजा। और आज की स्थिति क्या है क्योंकि प्रभुपाद आज क्या हो गया है कि अब सरकार कह रही है कि ये शराब और ये मांस फुटकर में बिचेगा राइट। अब नियम ऐसा बनने जा रहा है कि जैसे परचून की दुकान पर चावल दाल आप खरीदने जाते हैं तो ये जो मदिरा है अब सरकार ऐसा नियम बनाने जा रही है कि आपको फुटकर भाव की तरह मिलेगा। अब आप सोचिए कि देश की हालत क्या होगी। यही प्रभुपाद जी यहां बताते हैं कि ये जो है गलत है। तो ये जो प्रजा है राजा अपने हिसाब से प्रजा के बारे में सोच रही है अब प्रजा अपने हिसाब से राजा के बारे में सोच रहा है इसलिए दोनों कंफ्यूज है आपस में। क्यों कि कोई राजा को शिक्षा देने के लिए आगे नहीं आ रहा है। चापलों से घिरा हुआ राजा क्या करेगा है नहीं क्योंकि संघ इसीलिए राजा वही बनाते हैं जो प्रजा का ख्याल रख सके। इसलिए प्रभुपाद जी अपने ताप में बताते हैं कि आज जहां देखे वहीं ये शराबें और मांस बन रहे कि इसलिए कि हम खाते हैं इसीलिए दुकानें खुलती हैं। अगर प्रजा मांसाहार करना बंद कर दे और शराब पीना बंद कर दे ये दुकानें चलेंगी दुकानें अपने आप बंद हो जाएंगी क्योंकि प्रजा खा रही है तो दुकानें खुलती चली जा रही हैं। केएफसी मैकडोनाल्ड जहां देखो ये सारी दुकानें क्यों खुलती चली जा रहे हैं गली गली में अंडे बिक रहे हैं। सरकार नारा लगाती है कि संडे हो या मंडे रोज खाओ बोलिए ना संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। लेकिन उनको याद रखना चाहिए यमराज मारेंगे डंडे। अगर आप इस तरह से झूठे नारे लगा करके आप पापाचार करने का कोई अधिकार नहीं है तो यमराज मारेंगे डंडे ये ध्यान रखा जाए। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि लोग जो हैं तस्करी कर रहे हैं चोरी छिपे नियम बनाया जाता है। जैसे कहते हैं कि प्रभुपाद जी अपने तापन सुना कि ये जो पाप में जीवन के फलों का अर्थात युद्ध अकाल भूकंप प्रभुपाद जी तापन बता रहे हैं ये जो भूकंप आ रहा है जल की बारिश नहीं हो रही है ऐसा क्यों हो रहा है कि लोग पाप कर रहे हैं। तो जब तुम प्रकृति के अनुसार नहीं चल रहे हो तो प्रकृति तुम्हारा साथ क्यों देगी। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन्स का तीसरा नियम क्या है गेंद मारोगे जितनी ताकत से उतनी अगर रिवर्स में होगी। तो अगर तुम गलती करोगे अगर प्रजा गलती करेगी तो उसका परिणाम भी भुगतेगी और परिणाम कौन देगा प्रकृति। देखिए आज इंसान अकाल में क्यों भूखा मर रहा है पानी के लिए तरस रहा है इसीलिए तरस रहा है कि वो न प्रकृति के अनुसार चल रहा है और न प्रकृति के जो मालिक हैं कौन है कृष्ण उनके अनुसार चल रहा है। न तो प्रकृति की बात मान रहे हो न प्रकृति के मालिक की बात सुन रहे हो तो दंड तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा और दंड लोग भुगत रहे हैं कि दंड कौन दे रहा है प्रकृति दे रही है। अब प्रकृति के प्रेसिडेंट कौन है मैया अध्यक्ष है प्रकृति भगवान कृष्ण है इसी का परिणाम है कि लोग भुगत रहे हैं। इसीलिए आप कितना भी पानी पानी चिल्लाए पूरे विश्व के लोग कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग है नहीं अपने पाप की ओर ध्यान नहीं देख रहे हैं कि इसका कारण क्या है। अरे तुम पाप कर रहे हो इसीलिए इसका कारण है। हम तो ये तो चैलेंज है 30 दिन तक पूरे पृथ्वी के लोग जो लोग भूकंप से गर्मी से जल से त्रस्त हैं परेशान हैं कि आज अगर 18 रुपए 20 रुपए 30 रुपए बोतल में पानी मिलता है आपको एक गिलास पानी चाहिए एक बोतल पानी चाहिए तभी इसका रेट कितना हो गया है 30 से 35 रुपए तक में पानी बिक रहा है। तो 20 साल के बाद पानी की कीमत क्या होगी सोचिए ऐसा क्या हो रहा है उसका कारण यही है। यही प्रभुपाद जी कहते हैं कि आज सरकार और प्रजा के लोग पाप में जीवन में लगे हुए हैं और उसका फल क्या पा रहे हैं यही पा रहे हैं गर्मी पा रहे हैं उनको ठंडक चाहिए भगवान गर्मी दे रहे हैं पानी चाहिए पानी नहीं मिल रहा है नहीं। जब बरसात चाहिए तो सूखा पड़ रहा है और जब सूखा चाहिए तो बाढ़ आ रही है। ऐसा क्या हो रहा है? इसके सोचने में कोई लगा नहीं हुआ है, बस पाप कर्म करते जाओ। और ये जो है ये अच्छा नहीं, यही प्रभुपाद जी इस तात्व में समझा रहे हैं कि प्रकृति जो है साथ नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम प्रकृति के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो भगवान बड़े चालाक है, भगवान बड़े चतुर हैं। उन्होंने गीता में यही कहा, कर्मणे वा अधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, कर्म करने पर अधिकार तुम्हारा है, फल मेरे हाथ में है। इतनी बात लोगों के समझ में नहीं आ रही है, एक श्लोक की एक लाइन लोग समझ नहीं आ रहे कि कर्म करने पर अधिकार हमारा है, भगवान का तुम्हारा कर्तव्य है, अधिकार है कर्म करने का, लेकिन फल मेरे हाथ में है। और फल उनको क्या मिल रहा है? ये फल मिल रहा है उनको, क्यों? क्योंकि कर्म वे भगवान के अनुसार नहीं कर रहे हैं। क्योंकि कर्म भगवान के अनुसार नहीं करोगे, हाँ भगवान तो क्या कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कि हे अर्जुन कि पत्र पुष्प और फल अगर प्रेम से कोई मुझे अर्पित करता है तो मैं खाता हूं। अब तुम खिलाना ही नहीं चाहो तो क्या करेंगे? और आज लोग यही कर रहे हैं, भगवान को अपने घर में रखते हैं, उनके सामने मिश्री और इलायची रख देते हैं और खुद गर्म गर्म पराठा खा दे रहते हैं। भोग नहीं लगाएंगे, भगवान को एक जगह रख देंगे। आप इससे आप सब जानते हैं, कभी कभी जब हम लोग किसी के घर में जाते हैं तो लोग जानते क्या है? अरे स्वामी जी, अरे प्रभु जी, आप हमारे कुटिया में पधारे हैं, महल, लेकिन क्या कर रहे हैं? कुटिया। देख झूठ बोलने की आदत है, बनाए हैं जो बीच में बंगला है, और जब भग जाता है तो कहते हैं हमारे कुटिया में पधारे हैं। अरे और जब जब बोलते हैं कि आइए मैं अपनी कुटिया देख लीजिए, गरीब की कुटिया देख लीजिए, तो क्या बोलते हैं? ये मेरा डाइनिंग हॉल है, ध्यान सुनिएगा, मेरा ड्राइंग रूम है, ये मेरा बच्चों का है, ये मनोरंजन कक्ष है, ये मेरा है। जब भक्त पूछता है भगवान कहाँ है, जब सब तुम्हारा है तो भगवान का कमरा कहाँ है? तो जो वेस्टेज जगह होती है उस कॉर्नर में भगवान को फिक्स करके बैठा देते, कॉर्नर, एक कॉर्नर में भगवान को बैठा दिया है। अब देखिए यहीं पे देखिए भगवान है, वहां पे उस घर में भगवान है, भक्त पहुंचा है, करा मेरा ड्राइंग रूम है, मेरे बच्चों का है, मेरा 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 मेरी किचन है। आज वही व्यक्ति जब भगवान के सामने अगरबत्ती से आरती उतारता है तो जानते क्या बोलता है? कि सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा। कह देखो अभी मेरे भक्त के सामने जीवन बोल रहा है कि सब मेरा मेरा है, और जब मुझे अगरबत्ती दिखा दे कहता है सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा। तो आप कैसे समझ सकते हैं कि आपके घर में सुख शांति आएगी? चैलेंज है, आप एक तक अगरबत्ती आप जला दीजिए, है ना, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। कि लिप सर्विस से भगवान प्रसन्न नहीं होते, वो तुम्हारी हृदय की भावना से भगवान प्रभावित होते हैं। इसीलिए भगवान हृदय में अवस्थित रहते हैं, हृदय में। दाई से क्या पेट छिपाई, आप मुख से बोले लेकिन हृदय में आपकी क्या सोच है, भगवान उससे प्रभावित होते हैं। ये प्रभुपाद है कि एक्शन हमारा अच्छा नहीं हो रहा है। दूसरे भगवान कि लोग अपने घर में एक कमरे में टेलीविजन रखते हैं और एक कमरे में क्या रखते हैं? भगवान। आप हिंदुस्तान के किसी भी घर में आप चले जाइए, किसी न किसी का छोटा बड़ा मंदिर बनाते ही बनाता है, किसी न किसी को रखा जाए, चाहे देवी को रखे, चाहे देवता को रखे, चाहे कृष्ण को रखे, मैं किसी न किसी का मंदिर छोटा सा बना के रखता ही रखता है। लोग घरों में तो रखते हैं और अपने आपसों में भी क्या करते हैं? रखते हैं। लेकिन समस्या यहीं पे है, रखने से कुछ नहीं होता, क्योंकि भगवान समय की कसौटी से परख लेते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं यू लव मी फॉलो मी, अगर तुम उसे प्रेम करते हो तो जो मैं कहता हूं उसे करो। भगवान से तुम अगर प्रेम करते हो, भगवान को रखते भी हो, लेकिन भगवान के अनुसार चलते नहीं हो, तो ऐसे प्रेम से कोई मतलब नहीं है भगवान का। अगर आप किसी से प्रेम करते हो तो वो जो कहता है करिए। तो भगवान को अगर आप भोग नहीं लगाते और भगवान को आप समय नहीं देते हैं, असली भगवान को रखे हैं, तो भगवान से आपसे कैसे प्रसन्न होंगे। तो लोग अपने घरों में क्या करते हैं, एक कमरे में मंदिर बना दिया और एक घर में टेलीविजन रखा हुआ है। वहीं घर के लोग आप ही बताइए कि सब ज्यादा किसके सामने बैठते हैं, एक कमरे में टेलीविजन है और एक कमरे में भगवान है, अपने घर में लोग किसके सामने सब ज्यादा समय देते हैं? निश्चित रूप से किसके सामने बैठते हैं? टेलीविजन के सामने, जिसको प्रभुपाद जी इडियट बॉक्स कहा करते थे, इडियट बॉक्स। तो आप सब ज्यादा समय टेलीविजन के सामने दे रहे हो, और जब मुसीबत पड़ती है तो किसके सामने भागते हो, किस कमरे में जाते हो? वी हैव टू रिवर्स इट। तो आदमी किसके कमरे में भागता है? भगवान कमरे में। आप खुद बताइए भगवान उसके ऊपर कृपा क्यों करेंगे? क्योंकि वो कृपा करने के लायक नहीं है। क्यों कृपा करेंगे? जब सुख में रहते हो टेलीविजन देखते हो, है ना, पब में जाते हो, डांस देखते हो, काम करते हो, जब मुसीबत पड़ती तो मेरे पास दौड़ते हो, है ना, रिवर्स। यही कारण है कि सब घर घर में लोग परेशान हैं, है ना, भगवान को रख करके लोग परेशान हैं। भगवान को रख करके भी लोग अपने घर में क्यों परेशान हैं? सोचने वाली बात, जहां भगवान होते हैं सब शांति रहनी चाहिए, लेकिन अशांति इसीलिए है कि भगवान को रखे हो लेकिन भगवान की बात नहीं मान रहे हो, भगवान को साथ नहीं चले। ये उसी प्रकार से है जैसे घर में आपका दादा रहता है, दादा है वो, दादा जीवित है और नाती पोते उसकी बात नहीं मान रहे हैं, उसको इतना दुख होता है, बोल नहीं सकता, कर नहीं कर सकता, लेकिन चूंकि बात नहीं, इसे कष्ट झेल रहे हैं। यही कारण है कि भगवान को रख करके भी यदि हमें मुसीबत है, इसे हमारी कमी है, हम अपना कर्म नहीं कर रहे हैं, जैसा कर्म कर रहे हैं परिणाम भगवान वैसा हमको दे रहे हैं, गेंद हमारे पाले में है। अब गेंद को हम कैसे खेलते हैं ये हमारे पर, ये भगवान की बुद्धि है। कर्मण्येवाधिकारस्य का मतलब होता है कि जैसा हम कर्म करेंगे भगवान वैसा फल देंगे। और संसार के लोग अगर कष्ट में है, भूकंप आ रहा है, पानी जाते भी नहीं है, तो इसका मतलब कि कर्म अच्छा नहीं कर रहे हैं, अब परिणाम उसका उनको अच्छा नहीं मिल रहा है। इसे जो प्रकृति है वो भी साथ नहीं दे रही, भगवान तो साथ देंगे ही नहीं, क्यों देंगे? इसलिए जब प्रभुपाद जी अमेरिका जाते थे तो एक माता जी थी, बार बार कहती हमारे ऊपर कृपा कीजिए, आशीर्वाद दीजिए, कृपा दीजिए। प्रभुपाद जी ने कहा कृपा तो बह रही है, एक कृपा लेने के लायक बनना चाहिए, है ना। प्रभा उदाहरण दिया कि जैसे जो वेव्स होती, जो तरंगे होती हैं, वो बहती रहती हैं, लेकिन अगर आपका टेलीविजन ही खराब है और स्विच ऑफ करके रखा है तो तरंगे बहती हुई भी क्या है, बेकार है। तो हम अपना स्विच को ऑन करना पड़ेगा। अगर भगवान की कृपा प्राप्त करनी है तो हमें अपने स्विच को क्या करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा। और तब जो भगवान की कृपा बह रही है वो हमको क्या करे, हम उसके पात्र बनेंगे। तो स्विच ऑन करने का सबसे सुंदर तरीका चैतन्य महाप्रभु आके दिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप जानते हैं कि हमारे प्रभुपाद जी जैसे इसमें बता रहे हैं कि भूकंप अभिता है, प्रकृति का नियम है कि जब ईश्वर के नियम में त्रुटियां होने लगती हैं तो उस युद्ध के अचानक होता है। ये जितने भी युद्ध, ये सारे घटनाएं हो रही हैं, सिर्फ इसीलिए हो रही हैं कि हम भगवान के नियम के अनुसार जीवन नहीं जी रहे। जैसे लोगों को पानी चाहिए, ये है पानी, ये है जल। आज वैज्ञानिक लोग गर्व करते हैं कि हम बहुत प्रगत कर लिए हैं। कितना प्रगत कर लिए, बहुत आगे निकल गए। हम कहते हैं, प्रभुपाद जी बताते थे कि हमारा सिद्धांत क्या था, वैज्ञानिक का सिद्धांत है कि हम बहुत आगे निकल चुके हैं, लेकिन हमारे प्रभुपाद जी कहते हैं तुम खाक आगे निकल चुके हो, पानी तक के लिए तुम भगवान पर आश्रित हो। क्योंकि पानी का फार्मूला क्या होता है, H2O, हाइड्रोजन का दो भाग और ऑक्सीजन का एक भाग मिलाकर क्या बनता है, पानी बनता है। अब देखिए, H2O, हाइड्रोजन का दो भाग ऑक्सीजन का पानी बनता है। प्रभुपाद जी ने वैज्ञानिक से पूछा, वह कौन सा वैज्ञानिक है जब तुमने ये पानी का फॉर्मूला जब तुम्हें पता चला, लेकिन ये पानी उसके पहले से मौजूद था, तो वह कौन सा वैज्ञानिक है? तो उसी वैज्ञानिक बोला, दैट इज गॉड। प्रभु, यस आई नो द नेम ऑफ गॉड कृष्ण। तो कृष्ण ही सबसे बड़े वैज्ञानिक है, आदि वैज्ञानिक, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। तो सुप्रीम साइंटिस्ट कौन है? कृष्ण ही है। अब तुम वैज्ञानिकों को अगर पानी का फॉर्मूला मालूम है तो क्यों नहीं पानी बना करके पिलाते हैं? बंबई के लोग, दिल्ली के लोग पानी के लिए क्यों तरस रहे हैं? किसान अपनी आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? बनाओ पानी, पिलाओ पानी। तुम वैज्ञानिकों के बस में बात नहीं है। कहते हम बहुत बड़ा कर रहे हैं, तुम पानी तक मानसून के प्रति, सरकार कहती है कि मानसून बहुत पीछे चला गया है। तुम्हारे पास फार्मूला है कि पैकेट में फार्मूला होते भी पानी को तरसते, यही विज्ञान है तुम्हारा। सोचने वाली बात, ये थिंक इट कि एक जल पर भी हम भगवान पर निर्भर हैं। आसन अब भगवान ने फार्मूला बताया कि अन्न की उत्पत्ति किससे होती है? वर्षा जल से होती है। अब वर्षा कैसे होती है? भगवान का नाम लेने से। इतना सुंदर फार्मूला है। तो 20 किलो अगर पानी चाहते हैं तो और कुछ नहीं करें, सिर्फ क्या करें? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बस कीर्तन करिए, भगवान का नाम लीजिए, भगवान प्रसन्न होंगे, बारिश होगी, और जब बारिश होगी अन्न की उत्पत्ति होगी। तो जल और अन्न जब प्रचुर मात्रा में होगी तब लोग क्या होंगे? सुखी रहेंगे। तो आप सुखी रहना चाहते हैं तो भगवान का फॉर्मूला चलेगा, और दुखी रहने के लिए तो वैज्ञानिकों का फॉर्मूला तो है ही है नहीं? देखिए, सुंदर एक गुलाब का फूल है। अभी वैज्ञानिकों को गुलाब के फूल का फॉर्मूला का पता नहीं चला है, तो क्या करें? बेचारे कागज का फूल बना देते हैं। पूरे मार्केट में चल जाइए, प्लास्टिक के फूल, प्लास्टिक के आम, प्लास्टिक के केले, प्लास्टिक के अंगूर, कागज के फूल। तो खाने के लिए तो भगवान का फॉर्मूला, और दिखाने के लिए प्लास्टिक का फॉर्मूला। ये धोखा नहीं चलेगा लोगों के साथ। हाँ, जो तुम्हें खिला रहा है अंगूर केला खिला रहा है, उसका तुम नाम तक लेने नहीं चाहते। जो प्लास्टिक का केला तुम्हें बुला के दिखा रहा है, जिसे आप खा नहीं सकते, दिखा सकते हैं, उसको वाहवाही कर रहे हो। दिस इज द फुलिशनेस। यही मूर्खता है आज समाज की। कहते हैं वे बहुत पढ़े लिखे हैं, क्या यही खाद पढ़े लिखे हो कि जो व्यक्ति खाने का हर चीज दे रहा है उसका तुम नाम नहीं लेना चाहते? शर्म आती है, माला पकड़ के चलने में शर्म आती है। हाँ, और प्लास्टिक के आम, प्लास्टिक के अंगूर गाड़ी के गुच्छे में लगा दें, गुच्छा हाँ, अंगूर का गुच्छा गाड़ी में शोभा बढ़ाने के, खाने के लिए तो भगवान का जो बनाया हुआ अंगूर है उसको खाते हो। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो जिसने ये फार्मूला दिया, इसीलिए वैज्ञानिक कहते रिसर्च। रिसर्च का मतलब होता ही दोबारा जान लेना है। तो जिस वैज्ञानिक, जिस परम भगवान ने पहले खोज के हमें एक गुलाब का फूल है, पानी, अनाज, गेहूं, चना सब दे दिया है, जिसने खोज करके सब दे दिया है, उसका नाम नहीं लेना है। और जो दोबारा खोज रिसर्च करे उसका लाभ आगे हो, ये बड़ी मूर्खता है। रिसर्च का मतलब होता है जैसे रीटेक, रिपीट। एक बार चीज खोजी जा चुकी है, उसको उसकी फॉर्मूला जानना, ये महानता है। महान वह व्यक्ति है जो पहले ही सब बना करके दे दिया है आपके हाथों में, और वो कौन है? भगवान। यही प्रभुपाद जी यहां चाहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उद्देश्य लोगों को शुद्ध और पूर्ण बनाना है, क्योंकि ये लोग मूर्ख हैं, ये अज्ञान है, इनकी अज्ञानता को हमें क्या करना है? दूर करना है। जो वैज्ञानिकों के चंगुल में लोग फंसे हुए हैं उनको छुड़ाना हमें देना है, भगवान का ज्ञान। इसलिए प्रभुपाद की किताब लिखी आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, कि हमारा भी एक विज्ञान है, लेकिन वो विज्ञान कैसा है? आत्म साक्षात्कार का विज्ञान है। कि जब तक इसके बारे में तुम्हें ज्ञान नहीं होगा तो सारे विज्ञान क्या है? फेल है। जैसे अभी जानते क्या बोले वैज्ञानिकों ने, एक चंद्रमा पे, प्रभुपाद जी कहते चंद्रमा पे नहीं गए, हम मान लेते हैं कि चंद्रमा पे गए। हाँ, तो प्रभुपाद जी कहते हैं एक पत्थर लेके आए चंद्रमा से, एक पत्थर के लिए करोड़ रुपए का डॉलर खर्च कर दिए, है ना, सिर्फ एक स्टोन के लिए, जो कि इस पृथ्वी पर कितने पहाड़ हैं, है ना। अब क्या करें, अभी लेटेस्ट क्या कहे कि उन्होंने पता लगा लिया है उनके आने कि वहां भी पानी है, है ना। देखिए कहीं वहां पानी है, कहते कि इतना सारा निचोड़ने के बाद एक गिलास पानी के लिए तुम कितना करोड़ डॉलर जा करके खर्च किया, जबकि उतना पैसा अगर जमीन पर लगा देते तो पानी ही पानी चारों तरफ। ये मेरा कहना कि हाउ वी आर वेस्टिंग फॉर वन ग्लास वाटर, एक गिलास पानी के लिए तुम चांद पर जाने के बाद ही करते हो, उतना पैसा जितना लगा है तुम यहां पर लगा दो जमीन पर, पानी ही पानी है, कैसे मिसयूज हो रहा है आपके धन का, सोचिए इस बात को, है हम कहां जा रहे हैं, ये हमारी स्थिति है, हमारी स्थिति यह है। इसलिए तरस में, इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि असीन भावतम के संदेश अथवा कृष्ण चेतना को प्रसारित करने से ही संभव है। ये जितनी भी असंभव चीजें हैं ये सारी चीज संभव होंगी यदि आप हरे कृष्ण का आंदोलन, हरे कृष्ण आंदोलन जिसके लिए प्रभुपाद जी ने स्थापना की है, हरे कृष्ण आंदोलन कोई साधारण आंदोलन नहीं है, यही ऐसा आंदोलन है जब इन सारे चीजों में सुधार ला सकता है और कोई आशा नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी अपने इसमें कंक्लूजन कहते हैं कि बड़े बड़े औद्योगिक व्यापारिक प्रस्थानों ने सुरक्षा कोष में हजार रुपए लिए हैं जो बारूद के रूप में धर्म को फर्श कर भस्म कर रखा है। कितनी बड़ी बात प्रभुपाद जी अपने इस समरी में कर रहे हैं, कितने बड़ा समराइज कर रहे हैं कि ये जो बड़े बड़े औद्योगिक घराने हैं ढेरों का ढेर पैसा जो है बारूद के रूप में धन को भस्म कर रहे हैं, ये रखे हुए हैं, अगर यही धन हमारे हरे कृष्ण आंदोलन को दे दें, अगर यही धन हमारे हरे कृष्ण आंदोलन को दे दें तो हम पूरे दुनिया को स्वर्ग बना सकते हैं, पूरा आनंद सारा भक्ति में आनंद ले सकता है, सारे पशु पक्षी जो एक इंसान इंसान में प्रेम नहीं है वो एक साथ नाचे गाए प्रसाद पाए, इसके लिए आंदोलन है, इससे सुधार होगा। लेकिन यही लोग, यही औद्योगिक घराने के लोग क्या करते हैं, जो हमारे भक्तों से धन मांगते हैं कि आप धन दीजिए हम गीता बांटेंगे, आप धन दीजिए हम प्रचार करेंगे प्रसार करेंगे, तो ये धन देने में क्या करते हैं, आनाकानी करते हैं। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि यही लोग आनाकानी करते हैं, वहां पर 1000 करोड़ जब भग जाएगा तो 1 लाख के बारे में भी नहीं सोचेगा, जल्दी सोचने वाली बात, घर में 1000 करोड़ जब सीबीआई छापा रेड पड़ती है तो पता चलता है कि इनके घर में 5 करोड़ मिला कैश, है ऐसा होता है, इतने लाखों की ज्वेलरी मिली है ना। और जब उसी के घर में भक्त, एक बार हमारे वहां की बात है, दिल्ली की बात है, हमारे बहुत बड़े सेठ के यहाँ पंजाबी बाग में रहते हैं, एक सत्य घटना बता रहा हूं, हमारे एक भक्त पंजाबी बाग के वहां पे गए और उनसे बोला कि आप जो है वो दीजिए, नहीं दिए, 5 दिन के बाद ही रेट पड़े उनके पास लाखों रुपए की जेवरात कैश मिले। मैं देख दंग रह गया पेपर में कि देखो हमारा भक्त गया था तो एक मेंबरशिप बनने के लिए भी तैयार नहीं हुआ और आज सारा धन ले गए। लोग इतने झूठे हैं, इस तरह से संसार दुनिया इस तरह से, प्रभुपाद जी बहुत त्रसित, इसीलिए प्रभुतापन लिखते हैं कि जब हमारे हर किसान के लोग जाते हैं तो यही धनवान लोग आनाकानी करते हैं, धन का दुरुपयोग हटाना चाहिए और सदुपयोग करना चाहिए, किसमें लगाना चाहिए, हरे कृष्ण आंदोलन में लगाना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य के कि ऐसी प्रसंग में संसार में समय समय पर उथल पुथल होता रहेगा, तो ये प्रसंग यही कह रहा है कि हमें भी सिर्फ भगवान की भक्ति करनी है और भगवान अपनी भक्ति से इतने प्रभावित हो जाते हैं भक्तों से कि भगवान जो है छोड़ते नहीं, उस भक्त भगवान छोड़ते नहीं है। इससे हम सबसे आप सबसे अनुरोध है कि जिस आंदोलन को प्रभुपाद जी ने हमको जुड़ा है, हम उससे जुड़े हुए हैं, तो हमें अपना भी कल्याण करना है भगवान की भक्ति करके, अब भक्ति दे करके दूसरों को भी क्या करना है, कल्याण करना है। इसके लिए ये हरे कृष्ण आंदोलन है, तो सब लोगों को हरे कृष्ण आंदोलन में सहयोग देना चाहिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो पांच सात मिनट है, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है? हृदय से हमें जो बात होती है हृदय से होनी चाहिए। देखिए यहां पे पृथु महाराज भगवान का दर्शन करके अवरुद्ध हो गए है नहीं, और लिप्स माने होंठ भी नहीं चल रहे, बोल ही नहीं सकते, लेकिन उन्होंने फिर भी क्या कि हृदय से आलिंगन किया। भक्त का स्वभाव ऐसा होता है, तो इसलिए हमें जो है बड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि प्रार्थना हम करें भगवान जानते हैं, हमें भगवान से मांगने की बात है कि भी मांगा, लेकिन फिर भी भक्त क्या करता है, मांगता है। जैसे ध्रुव महाराज भी जब भगवान, यही सेम स्थिति ध्रुव के साथ, वो गए थे सिंहासन पाने के लिए, राजा बनने के लिए, लेकिन जब भगवान सामने आ गए भूल गए, उनकी भी आवाज नहीं निकल रही पांच साल के बाद, भगवान ने फिर संघ से स्पर्श किया सिंहासन है, अतः उनकी आवाज निकल रही है ना। तो कभी कभी भगवान की प्रार्थना जो है लिप सर्विस का मतलब होता है कि हृदय से आवाज, हम हृदय से, हृदय कतार और लिप्स एक होना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है ना, ये बहुत आवश्यक है, हृदय कतार से नहीं तो लिप्स, वो भाव आने के लिए जो हृदय चोर हैं उनका नाम लेना पड़ेगा है ना। हमारे हृदय को चुराने कौन है, कृष्ण है, तो जो हृदय को चुराने वाले हैं, हृदय में निवास करने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण, उनके हमें क्या करना चाहिए, नाम लेना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, सारी समस्याओं की एक ही दवा है हरिनाम, हरे कृष्ण आंदोलन, ये बहुत महत्वपूर्ण है, सारी समस्याएं दूर। प्रभुपाद जी कहते हैं अगर आपके हृदय में लाखों करोड़ों राहु केतु हैं, लेकिन एक महामंत्र अगर आप जप करेंगे, नाम लेंगे, तो सारे राहु केतु क्या हो जाएंगे, भाग खड़े हो जाएंगे। ये सारे, इसलिए चांट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, सिर्फ इसी बात में प्रभुपाद जी कोलकाता में कितने घंटे तक प्रवचन दिया, और हर बार में जब प्रभुपाद कहते चांट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, इसी बात प्रसन्न रहने की एक ही एकमात्र दवा है भगवान का नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जगत